रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। रसुआ जिले में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई भौतिक संरचनाओं के पुनः निर्माण में सहयोग करने की चीन ने जताई प्रतिबद्धता। नेकपा एमाले की केंद्रीय कमेटी की बैठक में राजनीतिक विधान संशोधन और संगठनात्मक प्रस्तावों पर केंद्रीय सदस्यों के विचार रखने का क्रम आज हुआ है शुरू। कर्णाली कॉरिडोर अंतर्गत कालीकोट के खुलालू से बाजुरा और हुमला खंड में 9 पक्के पुल अब तक न बनने से यातायात संचालन में आ रही है समस्या। और बांग्लादेश में वायुसेना के विमान हादसे में कम से कम 20 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। रसुआ जिले में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई भौतिक संरचनाओं के पुनः निर्माण में सहयोग करने की चीन ने प्रतिबद्धता जताई है। उप प्रधान एवं अर्थमंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल और चीन के अंतर्राष्ट्रीय सहायता नियोग सिडका के अध्यक्ष चीन सियाओ दोंग के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडलों के बीच आज मंत्रालय में हुई भेंटवार्ता में ये प्रतिबद्धता आई है। वार्ता में सिडका के अध्यक्ष सियाओ दोंग ने पुनः निर्माण में आवश्यक सहयोग करने और भंसार की प्रक्रिया जल्द ही संचालित होने के हिसाब से काम करने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने बाढ़ आने पर नेपाल सरकार द्वारा उद्धार और लापता की खोज में दिखाई गई सक्रियता और सहयोग के प्रति धन्यवाद भी व्यक्त किया। वहीं अर्थमंत्री पौडेल ने आपदा के कारण क्षतिग्रस्त संरचनाओं के पुनः निर्माण में दिखाई गई रुचि और तत्परता को लेकर चीनी पक्ष को धन्यवाद दिया। बता दें कि अर्थमंत्री पौडेल और सिडका अध्यक्ष चेन के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडलों के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद 4 परियोजनाओं में सहयोग संबंधी पत्र पर हस्ताक्षर भी हुए। उन परियोजनाओं में चितवन के भरतपुर स्थित बीपी कोयराला मेमोरियल कैंसर अस्पताल में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन निर्माण संबंधी परियोजना और निजामती कर्मचारी अस्पताल के विस्तार की संभाव्यता अध्ययन शामिल हैं। इसके अलावा नेपाल चीन के बीच मानव संसाधन विकास संबंधी समझौता पत्र और केरुंग सीमा पार ट्रांसमिशन लाइन निर्माण की संभाव्यता अध्ययन संबंधी माइन्यूट पर भी हस्ताक्षर हुए। नेकपा एमाले केंद्रीय कमेटी की 9वीं बैठक में राजनीतिक विधान संशोधन और संगठनात्मक प्रस्तावों पर केंद्रीय सदस्यों के अपने विचार रखने का क्रम आज शुरू हुआ। ललितपुर चैसल स्थित एमाले मुख्यालय में हुई बैठक में आगामी दूसरे विधान महाधिवेशन में प्रस्तुत होने वाले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली के राजनीतिक प्रतिवेदन, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल के विधान संशोधन प्रतिवेदन और महासचिव शंकर पोखरेल के संगठनात्मक प्रतिवेदन पर धारणा रखना शुरू हुआ है। कर्णाली कॉरिडोर अंतर्गत कालीकोट के खुलालू से बाजुरा और हुमला खंड में 9 पक्के पुलों के अब तक न बनने से यातायात संचालन में समस्या आ रही है। विक्रम संवत 2079 के आषाढ़ में ही समझौता हो चुका है लेकिन काम अब तक शुरू नहीं हुआ है। ये बात सड़क डिवीजन कार्यालय हुमला के प्रमुख बेल बहादुर नेपाली ने बताई। उन्होंने बताया कि पुल की डिजाइन स्वीकृत कराने के प्रावधानानुसार 9 में से 7 पुलों की डिजाइन ही अभी तक स्वीकृत नहीं हुई है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने वर्तमान सरकार गठन के 1 साल में हुई मुख्य उपलब्धियों को साझा करते हुए आगामी कार्य दिशा के बारे में भी बताया। आज काठमांडू में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्वास्थ्य मंत्री प्रदीप पौडेल ने कहा कि सीमित स्रोत साधन के साथ भी मंत्रालय ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने आधारभूत अस्पताल संचालन, डेंगू संक्रमण पर नियंत्रण, एचपीवी टीका अभियान, आपदा व्यवस्थापन, आपातकालीन तैयारी, कर्मचारी समायोजन लगायत मुद्दों में स्पष्टता लगायत उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कैंसर, दिल, किडनी, स्पाइनल इंजरी जैसे 8 तरह की मुश्किल बीमारियों के लिए 2,00,000 रूपये तक की सेवा बीमा अंतर्गत मुहैया कराने की व्यवस्था लागू हो गई है। मंत्री पौडेल के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय अब तक 113 आधारभूत अस्पतालों का निर्माण पूरा कर चुका है और 55 अस्पताल संचालन के लिए तैयार हैं। इसके अलावा कई अन्य उपलब्धियों का भी उन्होंने जिक्र किया था। कृषि तथा पशुपंछी विकास मंत्री रामनाथ अधिकारी ने कहा कि मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाले हुए 1 साल में कृषि क्षेत्र में नीतिगत और संस्थागत सुधार कर किसानों को दी जाने वाली सहूलियत और सेवा प्रवाह में क्रमिक सुधार हुआ है। आज मंत्रालय में बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री अधिकारी ने ये बात कही। अपनी उपलब्धियों में रासायनिक मल खरीद और वितरण को सहज करने में नीतिगत पहल लगायत बातों का उन्होंने जिक्र किया। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन
भाग्यवानी बाबु राम्ररी आइपुग्नु भयो नि
हजुर राम्ररी पुगे ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड
नमस्ते बाबुजू
नमस्ते आउनु न भित्रै
हुन्छ बाबुजू
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है
उहाँ त बिहानै हो हुन्छ तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न म खाना तयार गर्दै गर्छु है
हस् हस् भाउजू
ओए वाइफाई होला नि पासवर्ड माग्न
हे त पनि एनटिसीको सस्तो डे प्याक छँदैछ नि
ए हो र
एनटिसीको डे प्याक लिन *14 ह्यास डायल गर्न
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार
अब बाँकी समाचार नेकपा माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने कहा कि देश में आर्थिक समृद्धि के लक्ष्य को हासिल करने के लिए नीतिगत और राज्य के सोचने के समग्र तरीकों में सुधार जरूरी है आज नेपाल उद्योग परिसंघ सीएनआई के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के साथ निजी निवास खुमलटार में भेंट के दौरान अध्यक्ष प्रचंड ने यह बात कही उन्होंने कहा कि राज्य के माइंड सेट को बदलकर निजी क्षेत्र को सहज वातावरण में काम करने देने की नीति अपनाना जरूरी है जनकपुर के एक होटल में युवक की हत्या के आरोप में गिरफ्तार हुई एक युवती को जिला प्रहरी कार्यालय ने सार्वजनिक किया है जनकपुर धाम के होटल एसपी एंड गेस्ट हाउस में विमलेश यादव की हत्या के आरोप में मोहत्तरी की बलवा नगर पालिका 7 की 24 वर्षीय जूली झा को पुलिस ने गिरफ्तार कर आज सार्वजनिक किया इरादतन हत्या के केस में जांच शुरू की गई है ये जानकारी धनुषा के प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी वरुण बहादुर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी पुलिस के मुताबिक मोहतरी गांवपालिका एक परसा के 28 वर्षीय विमलेश को गेस्ट हाउस में छुरे से हमला कर पहली मंजिल से नीचे गिराया गया था रविवार की सुबह इलाज के दौरान विमलेश की मृत्यु अस्पताल में हुई थी पुलिस के मुताबिक घटना की शुरुआती जांच के दौरान विमलेश की हत्या में झा का हाथ होने की बात सामने आई है पुलिस के अनुसार घटना के बाद झा के गेस्ट हाउस से भागने का सीन सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है बता दें कि विमलेश और वो युवती झा गेस्ट हाउस में शनिवार की रात 9:55 पर एक साथ आए थे उनके बीच संबंध और हत्या के कारण के बारे में अनुसंधान जारी है पवित्र धार्मिक स्थल देवघाट में 7 साल पहले बनाना शुरू किए गए विद्युतीय शवदाह भवन का निर्माण पूरा हो गया है विद्युत और मशीन इंस्टॉल करने के साथ आगामी भाद्र महीने से शवदाह भवन पूरी तरह संचालन में आ जाएगा ये जानकारी सघन शहरी तथा भवन निर्माण कार्यालय भरतपुर के कार्यालय प्रमुख झपट बहादुर थापा ने दी बता दें कि शहरी विकास कार्यालय ने 11 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत में शवदाह गृह का निर्माण करवाया है अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार बांग्लादेश की वायुसेना का ट्रेनर विमान आज ढाका के एक स्कूल पर गिर गया एपी की रिपोर्ट के मुताबिक हादसे में 20 लोगों की मौत हो गई है मरने वालों में 16 छात्र 2 शिक्षक और एक पायलट शामिल हैं एक अन्य मृतक से जुड़ी जानकारियां अभी नहीं मिली हैं हादसे में 171 से ज्यादा लोग घायल हैं 60 से ज्यादा घायलों को बर्न इंस्टीट्यूट रेफर कर दिया गया है मामूली रूप से घायल कई लोगों का उत्तरा मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है घायलों को हाथ ठेले पर अस्पताल ले जाने का एक वीडियो भी सामने आया है कई घायल बच्चों को हेलीकॉप्टर से अस्पताल पहुंचाया गया सरकार ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है हादसे के समय स्कूल में क्लासेस चल रही थीं और सैकड़ों छात्र वहां मौजूद थे बांग्लादेशी सेना ने वायुसेना का F-7BGI विमान के क्रैश होने की पुष्टि की है जो चीन में बना था विमान ढाका के दियाबारी इलाके में स्थित माइलस्टोन स्कूल एंड कॉलेज की 2 मंजिला इमारत से जा टकराया बीबीसी के मुताबिक विमान सीधे इमारत से टकराया इसने नर्सरी और जूनियर सेक्शन की कई कक्षाओं को चपेट में ले लिया स्कूल का मुख्य गेट पूरी तरह नष्ट हो गया और उसमें आग लग गई अब मौसम अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस रहा अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर रसुआ जिले में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई भौतिक संरचनाओं के पुनर्निर्माण में सहयोग करने की चीन ने जताई प्रतिबद्धता नेकपा एमाले की केंद्रीय कमेटी की बैठक में राजनीतिक विधान संशोधन और संगठनात्मक प्रस्तावों पर केंद्रीय सदस्यों के विचार रखने का क्रम आज हुआ है शुरू कर्णाली कॉरिडोर अंतर्गत कालीकोट के खुलालू से बाजुरा और हुमला खंड में 9 पक्के पुल अब तक न बनने से यातायात संचालन में आ रही है समस्या और बांग्लादेश में वायुसेना के विमान हादसे में कम 20 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।